एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज ना हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो मतलब हम रोज ही सुनते हैं, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन।
हाँ बिल्कुल,
सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे पर असल में ये हमारी चाय से लेकर हमारे फोन तक हर चीज से जुड़ा है ना?
बिल्कुल, और मैं भी हूँ आपके साथ। और हम ना इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैनफ्रेड स्टेगर की एक बहुत ही अहम किताब है ग्लोबलाइजेशन, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसका सहारा लेंगे।
अच्छा, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, नाम से तो लगता है छोटी होगी।
हाँ है तो छोटी पर है बड़ी काम की। भूमंडलीकरण की एक साफ तस्वीर दिखाती है।
और ये विषय आज इतना जरूरी क्यों लगता है?
देखिए, आज दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है ना, कोई आर्थिक उधल पुधल हो या कोई वीडियो वायरल हो जाए।
हाँ वो तो है,
पलक झपकते हम तक पहुंचता है और हमारी जिंदगी पर असर भी डालता है। तो ये समझना कि ये सब जुड़ा कैसे है आज बहुत जरूरी हो गया है।
सही कहा।
तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस कॉम्प्लेक्स से लगने वाले टॉपिक को थोड़ा आसान बनाएं और स्टेगर ने क्या क्या कहा है उसके अलग अलग पहलू देखें।
हाँ बिल्कुल,
तो शुरू करें।
जरूर। तो सबसे पहले ये मैनफ्रेड बी स्टेगर हैं कौन, मतलब इनकी बात क्यों सुने हम?
देखिए, मैनफ्रेड स्टेगर जो हैं वो हवाई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
और ग्लोबलाइजेशन स्टडीज में दुनिया के बड़े नामों में से एक हैं।
अच्छा।
इनकी खास बात ये है कि ये सिर्फ मतलब इकोनॉमिक्स के चश्मे से नहीं देखते।
हाँ, मैंने भी सुना है कि ये कई सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर देखते हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर, जैसे अलग अलग एंगल से पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो।
बिल्कुल वही बात है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मुश्किल एकेडमिक आइडियाज होते हैं ना, उन्हें भी बड़े साफ और आसान तरीके से समझाते हैं।
मतलब भारी भरकम लेक्चर जैसा नहीं लगता।
नहीं बिल्कुल नहीं, और वो किसी एक तरफ खड़े नहीं होते, ना तो ग्लोबलाइजेशन के अंधभक्त हैं ना ही उसके घोर विरोधी। वो बस एक गाइड की तरह हमें अलग अलग तर्क, अलग अलग सोच और दुनिया पर उसका असली असर दिखाते हैं।
यानी हमें सोचने के लिए सम्मान देते हैं, अपनी राय नहीं थोपते।
एग्जैक्टली।
तो अब आते हैं किताब पर। ये किताब असल में पूछती क्या है, इसका निचोड़ क्या है?
किताब का जो मूल सवाल है वो ये है कि भाई ये ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या चीज। ज्यादातर लोग तो इसे बस व्यापार और पैसों से जोड़ते हैं, है ना?
हाँ, आमतौर पर तो यही सोच है, बाहर की कंपनियां आ गईं, हमारा सामान बाहर जाने लगा।
हाँ, लेकिन स्टेगर कहते हैं कि ये तस्वीर अधूरी है। उनका मेन पॉइंट ये है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये सामाजिक प्रक्रियाओं का एक बहुत ही जटिल, मल्टी डायमेंशनल और यहाँ तक कि अनइवन, मतलब असमान जाल है।
अच्छा।
और ये हमारी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर और एनवायरमेंट सब पर असर डाल रहा है।
तो फिर वो इसे डिफाइन कैसे करते हैं, कोई एक लाइन में?
हाँ, उन्होंने एक बड़ी सटीक सी परिभाषा दी है जो असल में पूरी किताब की नींव है।
वो कहते हैं कि
ग्लोबलाइजेशन है।
हाँ, कि ये है दुनिया भर में समय और स्थान के पार सामाजिक संबंधों और चेतना का विस्तार और गहनता।
ओके, विस्तार और गहनता मतलब फैलना और गहरा होना।
और ये चेतना शब्द भी है इसमें, इसका क्या मतलब है?
चेतना, चेतना का मतलब है हमारे सोचने का तरीका, कि क्या हम खुद को सिर्फ अपने शहर या देश का नागरिक मानते हैं या फिर एक बड़ी कनेक्टेड दुनिया का हिस्सा। क्या हमें लगता है कि दूर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका हमसे भी कोई लेना देना है? ये जो बढ़ती हुई ग्लोबल अवेयरनेस है ना, ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक हिस्सा है।
अच्छा, तो किताब हमें ग्लोबलाइजेशन यानी प्रोसेस, ग्लोबैलिटी यानी ये जुड़े होने की हालत, और ग्लोबल इमेजिनरी यानी जुड़ाव की हमारी सोच, इनके बीच का फर्क भी समझाती है।
हाँ बिल्कुल, सतही बातों से आगे ले जाकर इस पूरी ताकतवर प्रक्रिया को समझने में मदद करती है।
ठीक है, तो अब इसके अलग अलग आयामों और इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरा जाए। एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या ये ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज है, मतलब पिछले कुछ दशकों में ही शुरू हुई है?
स्टेगर का जवाब इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं नहीं, आज इसकी स्पीड और स्केल भले ही जबरदस्त हो लेकिन इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी है, ये कोई अचानक से नहीं आ गया।
हजारों साल कैसे?
हाँ, वो इसे कई फेजेस में देखते हैं। सोचिए, एकदम शुरू में प्रागैतिहासिक काल, जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैले, वो भी तो एक तरह का ग्लोबल फैलाव था, भले ही बहुत धीमा।
हाँ, बात तो सही है।
फिर आया पूर्व आधुनिक काल, बड़े बड़े साम्राज्य बने, रोमन, चीनी, भारतीय, सिल्क रोड जैसे रास्ते बने जिनसे सिर्फ सामान ही नहीं, आइडियाज, धर्म, यहाँ तक कि बीमारियां भी फैली। उसके बाद प्रारंभिक आधुनिक काल, लगभग 1500 से 1750, यूरोपियन ताकतों ने समुद्री रास्ते खोजे, कॉलोनियां बनाई, दुनिया एक नए ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में बनने लगी।
और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला टाइम।
हाँ, वो था आधुनिक काल, करीब 1750 से 1970। औद्योगिक क्रांति, स्टीम इंजन, टेलीग्राफ, नेशन स्टेट का उदय, इन सब ने दुनिया को और छोटा कर दिया।
और अब हम हैं समकालीन काल में।
बिल्कुल, लगभग 1970 के बाद से अब तक। कोल्ड वॉर का खत्म होना, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इसने तो जैसे टाइम और स्पेस को बहुत हद तक मिटाई दिया है।
सही बात है।
आज जो ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार और गहराई है, वो पहले कभी नहीं थी। पर यह समझना जरूरी है कि ये एक बहुत लंबी कहानी का बस लेटेस्ट चैप्टर है।
ये हिस्टोरिकल नजरिया वाकई पर्सपेक्टिव बदलता है। अच्छा, अब आते हैं उस पहलू पर जिसे लोग सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन से जोड़ते हैं, यानी इसका आर्थिक आयाम, पैसा, व्यापार, कंपनियां।
हाँ, ये बहुत ही अहम है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की इकोनॉमी को संभालने के लिए वेस्टर्न देशों ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनाया था।
हाँ, IMF, वर्ल्ड बैंक।
बिल्कुल, IMF, वर्ल्ड बैंक और GATT, जो बाद में WTO बन गया। मकसद था इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस को स्टेबल रखना।
लेकिन ये हमेशा तो नहीं चला।
नहीं, 70 के दशक में दिक्कतें आने लगी और फिर 80 के दशक से एक नई सोच हावी हुई, नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म।
अच्छा, वो रेगन थाचर वाला दौर।
हाँ, वही। मार्केट खोल दो, सरकारी दखल कम करो, प्राइवेटाइजेशन करो, इसे वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहा गया।
और इसी टाइम पर वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत पावरफुल हो गई।
हाँ बिल्कुल, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, TNCs, इनका दबदबा बहुत बढ़ गया। ये दुनिया भर में फैली हैं, इनका बजट कई छोटे देशों से भी ज्यादा है, खरबों डॉलर का FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करती हैं। हमारे आसपास जो बड़े बड़े ब्रांड्स दिखते हैं, ज्यादातर इन्हीं के हैं।
और टेक्नोलॉजी ने तो जैसे स्पीड और बढ़ा दी, पैसों का लेन देन सेकेंडों में दुनिया भर में, 24/7 ग्लोबल फाइनेंस मार्केट।
हाँ, मौके तो बढ़े पर रिस्क भी बढ़ा। जैसे 2008 का वो भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस याद है?
हाँ बिल्कुल,
वो इसी ग्लोबल फाइनेंस की अस्थिरता का ही नतीजा था।
अब जरा राजनीतिक आयाम पर आते हैं। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में देशों की अपनी ताकत, उनकी सॉवरेनिटी कम हो रही है? क्या नेशन स्टेट अब उतने जरूरी नहीं रहे?
ये सवाल तो बहुत उठता है। स्टेगर क्या कहते हैं इस पे?
स्टेगर का मानना है कि नेशन स्टेट खत्म नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, वो बदल जरूर रहे हैं।
बदल रहे हैं, कैसे?
उनकी ताकत को ना दो तरफ से चैलेंज मिल रहा है। एक तो ऊपर से।
ऊपर से मतलब?
मतलब इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, WTO वगैरह, इनके जो नियम कानून होते हैं वो मेंबर देशों को मानने पड़ते हैं। तो इससे उनकी पूरी आजादी थोड़ी कम होती है।
अच्छा, और दूसरा चैलेंज
वो है नीचे से।
नीचे से?
हाँ, यानी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है मानवाधिकारों के लिए, ग्रीन पीस है पर्यावरण के लिए, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है हेल्थ के लिए।
अच्छा, ये NGO टाइप संस्थाएं?
हाँ, ये सरकारों पर प्रेशर बनाती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, एक तरह की ग्लोबल सिविल सोसाइटी बना रही हैं। ये भी अब काफी असरदार हो गई हैं।
तो मतलब पावर अब सिर्फ सरकारों के हाथ में नहीं रही, वो बट गई है।
सही पकड़ा। स्टिगर इसे पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम की तरफ बढ़ना कहते हैं। वेस्टफेलिया की संधि 1648 ने नेशन स्टेट को सबसे ऊपर रखा था ना।
हाँ,
अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं जहां पावर राज्यों, इंटरनेशनल बॉडीज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बीच ज्यादा बंटी हुई है। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर शायद आज की दुनिया की सच्चाई यही है।
ये दिलचस्प है। अब आते हैं सबसे मजेदार पहलू पर, सांस्कृतिक आयाम। क्या ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया एक जैसी होती जा रही है? वो मैकडोनल्डाइजेशन वाली बात, या कुछ और हो रहा है?
अरे हाँ, ये बहस तो बहुत चलती है। एक डर तो है कि वेस्टर्न, खासकर अमेरिकन कल्चर, कोक, हॉलीवुड, फास्ट फूड सब पर छा जाएगा और हमारी लोकल संस्कृतियां खत्म हो जाएंगी। इसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हैं।
लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या हम सब बर्गरी खाने लगे हैं?
स्टेगर इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। वो एक दूसरे आइडिया पर ज्यादा जोर देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, या ग्लोकलाइजेशन भी कहते हैं, ग्लोबल प्लस लोकल।
ग्लोकलाइजेशन ये क्या है?
मतलब ये कि जो ग्लोबल चीजें लोकल लेवल पर आती हैं तो लोग उन्हें अपना ऐसे नहीं अपना लेते, वो उसे बदलते हैं, उसमें अपनी चीजें मिलाते हैं, उसे एक नया मिला जुला रूप देते हैं।
अरे हाँ, जैसे मैकडॉनल्ड्स इंडिया में मैक आलू टिक्की बर्गर बेचता है, वो कहीं और थोड़ी मिलेगा।
बिल्कुल। या जैसे हिप हॉप म्यूजिक दुनिया भर में फैला, पर हर जगह लोगों ने उसमें अपनी भाषा, अपने मुद्दे, अपनी धुनें मिला दी। बॉलीवुड में भी तो कितने ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिखते हैं, पर रहता तो वो बॉलीवुड ही है।
बिल्कुल सही उदाहरण। ये दिखाता है कि कल्चर कोई बंद डिब्बा नहीं है, वो जिंदा है, फ्लेक्सिबल है, बाहरी असर को लेकर कुछ नया बना लेती है। तो ये सिर्फ एक तरफा हमला नहीं है, बल्कि एक लेन देन है, एक मिक्सिंग है। और स्टेगर मानते हैं कि ये मिक्सिंग जो है वो होमोजेनाइजेशन से कहीं ज्यादा कॉमन है। और आखिर में वो आयाम जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जो शायद सबसे ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, पारिस्थितिक आयाम, एनवायरमेंट पर ग्लोबलाइजेशन का असर।
हाँ, और ये वो एरिया है जहां देशों की सीमाएं बिल्कुल बेमतलब हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का लेवल बढ़ना, बायोडायवर्सिटी लॉस, प्रदूषण, ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है, एमेजॉन के जंगल कटे या इंडोनेशिया के, असर तो सब पर पड़ता है। कहीं की फैक्ट्री का धुआं कहीं और एसिड रेन कराता है, समुद्र में फेंका प्लास्टिक कहीं भी पहुंच जाता है।
बिल्कुल।
ये आयाम हमें सबसे जोर से एहसास कराता है कि हम सब एक ही ग्रह, एक ही नाव पर हैं। इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कोई एक देश अकेले नहीं निकाल सकता। ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए ही चाहिए। ये ग्लोबैलिटी यानी हमारे जुड़े होने की सबसे ठोस हकीकत है।
तो इस पूरी बातचीत से अगर हमें कुछ मेन पॉइंट्स निकालने हो, कुछ की टेकअवेज, तो क्या होंगे?
मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे जरूरी, ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल है। सिर्फ इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, सब आपस में जुड़े हैं।
ये जरूरी है। दूसरा,
इसकी जड़ें इतिहास में गहरी हैं। ये कोई कल की बात नहीं, हजारों साल पुरानी प्रक्रिया है। इससे हमें आज को समझने में मदद मिलती है।
तीसरा, ग्लोबलाइजेशन विरोधाभासी है। ये जोड़ता भी है, तोड़ता भी है, मौके भी देता है, असमानता भी बढ़ाता है। इसे सीधे अच्छा या बुरा नहीं कह सकते।
और चौथा
जो मुझे बहुत अहम लगा, विचारधारा का रोल। स्टैगर जोर देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई नेचुरल फोर्स नहीं है, इसे खास विचारधारा है, खासकर मार्केट ग्लोबलिज्म ड्राइव करती हैं।
मार्केट ग्लोबलिज्म मतलब ये सोच कि मार्केट ही सब कुछ है और ग्लोबलाइजेशन सबके लिए अच्छा है।
हाँ, और ये दावा कि ये जरूरी है, इसका कोई लीडर नहीं, ये अपने आप हो रहा है। स्टैगर कहते हैं कि ये असल में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ना कि कोई फैक्ट। इसके अपने फायदे उठाने वाले हैं और अपने नुकसान उठाने वाले।
अच्छा, मतलब इस पर सवाल उठाना जरूरी है।
बिल्कुल। और इसके विरोध में दूसरी विचारधाराएं भी हैं, जैसे जस्टिस ग्लोबलिज्म जो न्याय पर जोर देता है, और हाँ, पांचवा पॉइंट, नेशन स्टेट बदल रहा है, गायब नहीं हो रहा, पावर अब बट गई है।
किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो याद रह जाती हैं, कुछ खास कोट्स या आइडियाज।
सबसे पहले तो वो बेसिक डेफिनेशन ही, सामाजिक संबंधों और चेतना का दुनिया भर में समय और स्थान के पार विस्तार और गहनता। इसमें वो चेतना वाली बात बहुत पावरफुल है कि ये हमारे सोचने के तरीके को भी बदल रहा है।
हाँ, वो तो है। और
दूसरा, वो मार्केट ग्लोबलिज्म का क्रिटिक, ये समझना कि सबके लिए फायदेमंद वाला नैरेटिव असल में एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट हो सकता है, ये हमें ज्यादा सवाल पूछने वाला बनाता है।
किसके लिए फायदेमंद, कैसे, है ना?
बिल्कुल। तीसरा, कल्चर वाले एरिया में वो हाइब्रिडाइजेशन वाली बात, ये एक उम्मीद देती है कि लोकल कल्चर दबेंगे नहीं बल्कि नए रूप लेंगे।
हाँ, ये काफी पॉजिटिव लगा मुझे भी।
और चौथा, नेशन स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन, न कि उसका गायब होना, ये आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है।
तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है, कैसे काम आ सकती हैं ये बातें?
पहला तो ये कि हम अपनी कंजम्पशन को लेकर थोड़े ज्यादा अवेयर हो सकते हैं। ये चीज कहाँ से आई, इसे किसने बनाया, इसके पीछे की ग्लोबल चेन क्या है।
हाँ, ये सोचने से शायद हम थोड़े जिम्मेदार बने।
दूसरा, हम न्यूज को बेहतर समझ सकते हैं। कोई ट्रेड डील होती है तो सिर्फ इकोनॉमिक एंगल नहीं, उसका पॉलिटिकल कल्चरल असर क्या होगा, किसके हित सदरे हैं।
तीसरा, काम की जगह पर। आजकल मल्टीनेशनल कंपनियों में या बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करना आम है, तो क्रॉस कल्चरल समझ बेहतर होती है।
बिल्कुल।
चौथा, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जब कोई नेता या एक्सपर्ट ग्लोबलाइजेशन को बस अच्छा या बुरा बोल दे, तो हम पूछ सकते हैं किस पहलू की बात कर रहे हैं, किसके नजरिए से, और क्या पहलू है।
सवाल पूछना।
हाँ, और आखिर में ये एक ग्लोबल इमेजिनरी बनाने में मदद करता है। ये एहसास कि हम सब कनेक्टेड हैं, चाहे इन्वायरमेंट से, कल्चर से, इकोनॉमी से, और हमारे एक्शन का असर दूर तक जाता है।
तो इस पूरी चर्चा से आपको पर्सनली क्या सीखने को मिला? कोई ऐसी बात जिसने चौंकाया हो? मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे है कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करना। ग्लोबलाइजेशन को सिंपल हाँ या ना में नहीं समझा जा सकता। और हाँ, इसकी ऐतिहासिक जड़ें कितनी पुरानी हैं ये जानकर वाकई हैरानी हुई। हम अक्सर इसे बहुत रीसेंट फिनोमेनन मान लेते हैं।
और मेरे लिए सबसे जरूरी बात ये समझना था कि विचारधाराएं कैसे हमारी समझ को शेप करती हैं, खासकर वो मार्केट ग्लोबलिज्म वाली बात। ये जानना कि जिसे नेचुरल बताया जाता है वो अक्सर पॉलिटिक्स होती है, ये आंखें खोलने वाला था। और हाँ, वो कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन वाला आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। ये दिखाता है कि कल्चर कितना रेजिलिएंट और क्रिएटिव हो सकता है।
तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हम एक तरफ राष्ट्रवाद का उभार देख रहे हैं, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज जैसा संकट है जो ग्लोबल एक्शन मांगता है। इन दोनों दबावों के बीच क्या लगता है, ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर कैसा होगा? क्या हम और ज्यादा जुड़ेंगे, या बिखराव बढ़ेगा, या फिर कोई बिल्कुल नई तरह की ग्लोबल व्यवस्था बनेगी? सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।